परम पूज्य भगवान श्री महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य श्री गुरु विद्यासागर महाराज योग के आठ अंगों के भीतर यम के पांच भेद हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और नियम के अनेक भेद हैं, स्वाध्याय, तपश्चरण आदि। आसन भी अनेक प्रकार के हैं, शरीर की भिन्न भिन्न मुद्राएं, हाथों की मुद्राएं और मुख मुद्रा, होठों की मुद्रा, पैरों की मुद्रा, इन सब की विभिन्न स्थितियां बनती हैं जिन्हें आसन कहते हैं। आसन योग का एक अंग है और उसमें विशेषता यह है कि वह एक अहिंसक प्रक्रिया है। सांस को बलपूर्वक रोककर या शरीर में अनावश्यक खिंचाव लाकर आसन नहीं किए जाते, किंतु बहुत प्रेम से आसन का अभ्यास होता है। हां, प्रारंभिक अवस्था में शरीर के अवयवों में पीड़ा हो सकती है, पर अभ्यास से वह पीड़ा दूर हो जाती है। और आसन में भी ध्यान के आसन अलग है। ध्यान के आसनों में वज्रासन, वीरासन, पद्मासन, सिद्धासन ऐसे अनेक आसन हैं। और आसन लगाने पर भी, जो उसकी विधि बताई गई है उसके अनुरूप आसन लगाने पर भी, तब तक उस आसन को सही नहीं समझा जा सकता जब तक आसन लगाने की थोड़ी देर पश्चात एक हल्कापन न आ जाए। यदि आसन सही ढंग से लगेगी तो फिर ऐसा लगेगा कि शरीर में एक तरावट आ गई है, एक ताजगी आ गई है। ये आसन बिल्कुल समुचित लगा हो तो आपको लगेगा नहीं कि अब उठें और फिर हम कुछ और काम करें, ऐसा लगेगा कि बस अब बैठो। प्राणायाम है। प्राणायाम का अर्थ होता है श्वास का संयम। सांस लेते समय भी संयम, अंदर लेते समय, छोड़ते समय, प्राय शरीर की मुद्रा ठीक न होने के कारण, टेढ़े बैठने के कारण भी श्वास की गतिविधि सही नहीं हो पाती, जिसके कारण बहुत से रोग मनुष्यों में पाए जाते हैं। ठीक से बैठे और फिर अंदर तक पूरी सांस भरे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी थैलियां हैं भीतर। लंग्स तो हैं दो फेफड़े, और उनमें भी बहुत सारे छोटे छोटे एल्वियोल आए, बारीक पैकेट्स जैसे हैं। तो सांस जब तक पूर्ण नहीं भरती अंदर, तो सारे पैकेट भर नहीं पाते, वो कई बार तक पिचक जाते हैं। और उसके कारण फिर बहुत सारे लोग ऐसे झुक जाते हैं, वो फिर आगे चलकर के सांस पूरी भर भी नहीं पाते, सांस की बीमारियां होती है। और बचपन में जो छोटे बच्चे रहते हैं, खेल कूद में लगे रहते हैं, वो हाँफते हैं तो वो सांस वहां तक पहुंचती है, इसलिए बच्चों में एक अलग ताजगी देखने को मिलती है जो बड़े में नहीं होती। तो ये श्वास का जो नियंत्रण संयम है ये प्राणायाम है। और इसमें भी क्या है कि सांस लेते समय आवाज ना निकले, अंदर जाए पूरी सांस बराबर लेकिन आवाज ना निकले, बाहर छोड़ते समय भी सहजता में बाहर आ जाए। और ऐसा लगना चाहिए कि जैसे यहां गले से खींच रहे हैं अंदर, नाक से खींचने के बजाय ऐसा एक सेंसेशन आना चाहिए कि जैसे अपन यहां से खींच रहे हैं भीतर से, तो उसमें एक अलग शक्ति उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार प्राणायाम के भी बहुत सारे विकल्प हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका, शीतली, शीतकारी, ऐसे बहुत सारे भेद प्राणायाम के भी होते हैं। फिर प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, इंद्रियों के विषय है लेकिन अपन प्रभावित न हो, कहने का तात्पर्य यह है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना प्रत्याहार है। आचार्य श्री कहते हैं कि मुंह में शक्कर भरी चम्मच रख लो और सूखी की सूखी बाहर आ जाए थोड़ी देर बाद निकालने पर, गीली न हो, तो रसना इंद्रिय का प्रत्याहार हुआ। स्पर्शन इंद्रिय है तो बीसों मच्छर बैठ गए, गर्मी सर्दी की बाधा हो लेकिन फिर भी कोई फर्क न पड़े, ये सब इंद्रिय विजय की बातें हैं। और पहला ही जो अंग योग का यम है, इसलिए यहां असंयमियों के योग की बात नहीं है, यहां तो यमी जनों की बात है। उसमें फिर दो विकल्प कर लेते हैं, देश यम और सकल यम, देश संयम सकल संयम। फिर ध्यान है, बल्कि ध्यान के पहले एक और अंग आता है धारणा। धारणा के पांच भेद हो जाते हैं, पार्थिवी, मारुति, अग्नि, वारुणी और तत्व रूपवती। क्रम से विचार करो तो पहले पार्थिवी, फिर अग्नि, फिर वारुणी, मारुति, मारुति, वारुणी और फिर अंत में तत्व रूपवती। धारणाओं के बाद ध्यान की बारी आती है। ध्यान शब्द तो सबका परिचित है और उसमें परमोक्ष हेतु चार भेद किए जाते हैं शास्त्रों में, तो उसमें आगे के जो दो भेद हैं वो तो मोक्ष के हेतु हैं, प्रारंभ के जो दो भेद हैं वो अपने आप समझने की बात है, वो संसार के हेतु है। तो प्रारंभिक दो ध्यान तो सबके चिर परिचित हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान चार प्रकार से होता है, जब कोई प्रिय अपने से बिछड़ता है, प्रिय वस्तु हो या प्रिय व्यक्ति हो, इनके वियोग में होने वाला आर्त ध्यान वियोग, वियोग जन्य आर्त ध्यान कहलाता है, वियोगज। और संयोग, अप्रिय का संयोग हो तब अंदर में जो मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है कि अब ये कब दूर होगा, ऐसी स्थिरता आती है कि नहीं? ध्यान अनस्थिरता है, इष्ट का वियोग होने पर भी मन बिल्कुल उसी में लगा रहता है, किसी का मरण हो जाए मन कहां लगता है, माला में नहीं लगता, पूजा में नहीं लगता, प्रवचन में नहीं लगता, उसी में लगता है। ध्यान हो गया ना, मन स्थिर हो गया उसमें, कब फिर मिलेंगे, अब इस जन्म से तो बिछड़ गए, न जाने कब फिर संयोग होगा, ऐसे कितने पीड़ाजनक विचार आते हैं मन में। ये वियोगज नाम का अर्थ ध्यान है। दूसरा संयोग है, कोई अनिष्ट आ जाए, अप्रिय का संयोग हो जाए, तो मन एकदम वही लगता है, ये कब हटे। जैसे आपके कमरे में सांप घुस जाए, अब आप चाहे कितना भी शास्त्र लेकर के बैठे हो, वॉकमैन से कान में कुछ सुनते हो, लेकिन मन ये लग रहा है कि कब बाहर जाए। अनिष्ट संयोग, ये दूसरा ध्यान संयोगज। तीसरा है रोगज, शरीर में कोई रोग हो जाता है तो दिन रात एक धुन लगी रहती है, कब ठीक होंगे। ठीक है, बीच में टूटते हैं विचार, बीच में मन कहीं और भटक जाता है, लेकिन फिर घूम कर वही विचार आता है कि कब ठीक होंगे। कुछ भी करो, सवेरे उठेंगे, नींद खुलेगी तो कुछ क्षणों के लिए तो कुछ याद नहीं रहता कि हम बीमार थे या स्वस्थ थे या क्या थे, एकदम ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन उसके बाद याद आता है कि अरे हमें तो मलेरिया चल रहा है, और फिर लगता है कब ठीक होंगे। ये रोगज आर्त ध्यान है। और कुछ क्षणिक पीड़ाएं भी हो जाती है, शरीर में कांटा लग गया, जैसे कांटा नहीं लगता, पैर पड़ता है कांटे पर, फिर चुप जाता है शरीर में, कांटा अपने आप आकर नहीं लगता, तो उस समय भी ऐसा लगता है कि बस अब इसको किसी तरह से जल्दी निकाला जाए। तो वेदना से होने वाला जो आर्त ध्यान है वो रोगज एक सामान्य नाम है। शास्त्रों में तो वैसे दो प्रकार से विवरण आए हैं, ये तो समान उच्चारण वाले शब्द हैं, वियोग, संयोग, रोग, और चौथा है भोग। भोग यानी इंद्रियों के सुख। प्राय मनुष्यों का मन भले बाहर से वो कुछ भी करते रहें, अंदर से कहीं ना कहीं उस तरफ जाता है, इंद्रियों के सुख की तरफ। दिन भर कमाई करते हुए भी पैसे की इतनी कामना क्यों है मनुष्य को, क्योंकि पैसे से तो इंद्रियों की सुख सामग्री प्राप्त होती है। यद्यपि कामनाएं आवश्यकता से अधिक है, ये जरूर मनुष्य का दोष माना जाता है, ही दोष कि कामनाएं जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है। आवश्यकताओं की पूर्ति तो संभव है, लेकिन कामनाओं की पूर्ति आज तक किसी की नहीं हो पाती, न हुई है। तो भोगज नाम का चौथा आर्त ध्यान है, माने भोगों की इच्छा। अब भोग यानी इंद्रियों के कोई भी सुख साधन। अब जल्दी से काम निपट जाए तो टीवी पर प्रोग्राम देखें, ये भी आर्त ध्यान है। चाय पी ले, ये भी आर्त ध्यान है। गुटखा खा लो, ये भी आर्त ध्यान है। पिक्चर देख लें, ये भी आर्त ध्यान है। ये सब जो आगामी काल संबंधी इंद्रिय विषयों की कामना रहती है वो सब भोगज नामक आर्त ध्यान में है। और उसमें इतना आनंद आता है मनुष्य को विषयों को प्राप्त करते समय, सेवन करते समय, कि वो सब कुछ भूल जाता है। जैसे साधु निर्विकल्प समाधि में लीन होकर सब कुछ भूल जाते हैं, वैसे ही भोगी व्यक्ति भोगों में लीन होकर उतने समय के लिए दुनिया को भूल जाता है। ये भी ध्यान है। ध्यान माने लीन हुआ ना किसी चीज में, लीन हुआ था वो इन चीजों में, चारों में। ये आर्त ध्यान के चार भेद हैं। इन चारों में पीड़ा रहती है, भोग क्यों चाहता है कि अभी मन अशांत है, मिल जाए तो फिर थोड़ा सा आनंद आ जाए, ये तो धारणा है ना। चाय पीने की इच्छा क्यों है कि अभी तलब लग रही है, माने बेचैनी है, पी लेने से थोड़ा सा राहत मिल जाएगी, तो उस दर्द को दूर करने के विचार में लगा हुआ है ना। तो दर्द का विचार जहां भी है वो सब आर्थ ध्यान रूप परिणति है। ये पहला ध्यान है अशुभ ध्यान, इसको दुर्ध्यान भी कह लो। दुर्ध्यान का पहला भेद आर्थ ध्यान। फिर दूसरा रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान माने क्या है? क्रूरता। और उसमें वो स्वयं में स्वीकार करेगा कि मैं क्रूर हूं, लेकिन बस आनंद आता है उसको उसमें। किसी को नीचा दिखाने में आनंद, किसी को पीड़ा पहुंचाने में आनंद, किसी को डांटने फटकारने में आनंद, किसी को दूसरे ढंग से तंग करने में आनंद, सास बहू के झगड़ों में आनंद, और दूसरों को टॉर्चर करने में आनंद होता है। ऐसा भले होना नहीं चाहिए ये बात आप सब जानते हो, लेकिन होता तो है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इसको जब तक थप्पड़ नहीं मारता तब तक, मैंने ऐसे विचार आ जाते मन में, और फिर थप्पड़ मारता तो फिर खुश हो जाता कि चलो अच्छा हाथ थोड़े साफ हो गए। ये है ये रौद्र ध्यान का प्रथम भेद, हिंसा नंदी। हिंसा से आनंदित होने वाला हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। और ये बच्चों से लेकर वृद्ध तक सब जीवों में पाया जाता है। जब तक सकल संयम को जीव अंगीकार नहीं करता तब तक रौद्र ध्यान की सत्ता नष्ट नहीं होती। और जहां तक परिग्रह है वहां तक रौद्र ध्यान का अभाव त्रिकाल में संभव नहीं है। ये ठीक है कि कुछ समय तक रौद्र ध्यान न हो, आर्थ ध्यान या फिर धर्म ध्यान में भी मन लग जाए, लेकिन परिग्रह जब तक रहेगा तब तक रौद्र ध्यान से मुक्ति नहीं मिल सकती। अब यहां पर रौद्र ध्यान के प्रथम भेद की चर्चा, हिंसानंद। किसी को पीड़ा हो रही है और अपने को आनंद आ रहा है। किसी की बदनसीबी ही किसी की खुश नसीबी है। ये संसार इतना टेढ़ा है कि दूसरे की भी बदनसीबी है और उसकी बदनसीबी अपनी खुश नसीबी है। इसका भावार्थ तो आप लोग लगा लेना, ये तो सूत्र समझ लो। तो ऐसी स्थिति है, पर पीड़ा में हर्षित होना हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान का दूसरा भेद है मृषानंदी। झूठ बोलने पर जब सामने वाला विश्वास करता है तब व्यक्ति को जो आनंद आता है उसको वही जानता है। आराम से और कभी फिर अपने मित्रों को प्रकट करें, मजा आ गया बोलता है वो, आज तो ऐसा चलाया उसको। झूठ बोलने में आनंद, मृषानंदी रौद्र ध्यान। जैसे राजा वसु इस रौद्र ध्यान के परिणाम स्वरूप सप्तम पृथ्वी में पहुंच गया था। क्या बोला था उसने? अजय निष्टव्यम, अजय से यज्ञ करना चाहिए। प्रश्न उनके सामने उपस्थित था कि अज यानी बकरा या पुराना धान, दो अर्थ तो आज के, तीन साल पुराना धान जो होता है जिसमें से अंकुर नहीं निकलता उसको भी अज बोलते हैं और बकरे को भी अज बोलते हैं। तो उसने पक्ष मन से ग्रसित होकर के घोषणा कर दी अज यानी बकरा। तब से वो बकरे की बलि चढ़ाने वाली प्रथा प्रारंभ हो गई। और वसु की क्या दशा हुई? गलत काम करने से ज्यादा गलत परंपरा चालू करने में हानि है। व्यक्ति स्वयं कोई गलत काम कर ले तो ठीक है, उसका फल तो मिलेगा उसको पाप के रूप में, लेकिन गलत काम की परंपरा डाल दे तो वो भयंकर पाप हो जाता है। तो वसु राजा ने समर्थन कर दिया कि बकरों से यज्ञ करना चाहिए। बस कितना बड़ा अनर्थ हुआ, उसको तो सप्तम पृथ्वी जाना पड़ा। ये मृषानंद असत्य में आनंद आना, दुकान पर तो प्राय हो जाता है ऐसा, पर फिर भी जो मार्जिन है, जो मर्यादा है, उसका उल्लंघन धर्म श्रद्धालुओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लालसा से क्या सिद्धि होने वाली है। वो जो जितनी जितनी लालसा आप बढ़ाओगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। कोई सोचे कि लखपति हम बनेंगे, बचपन से लक्ष्य बना लेंगे हम लखपति बनेंगे, लेकिन लखपति बनने के बाद वहां पर विराम नहीं है। लखपति बनने के बाद लगेगा कि अभी तो सिर्फ इतने डिजिट्स में है, एक डिजिट और बढ़वाना चाहिए। एक बढ़वाएगी तो लगेगा कि नहीं अभी तो काफी जीवन बाकी है, थोड़ा और पुरुषार्थ हो सकता है। अर्थ पुरुषार्थ भी पुरुषार्थ है ना, करोड़पति बन गया फिर उसको अरबपति बनने की चिंता होती है, फिर खरबपति और अंत में नरकपति बनता है। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष, तो बड़ी दुर्दशा है। मृषानंद झूठ में आनंद मानना, हर्षित होना, गाली देने, गाली देना भी तो असत्य वचन है। गाली देना, गाली देने से कितने पाप होते हैं। एक तो हिंसा होती है, हिंसा कैसे होती है कि अपने भाव कलुषित होते हैं और सामने वाले को चोट पहुंचती है, क्योंकि उसकी भी आदत है ना बुरा मानने की। यदि वो बुरा ना माने तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता गाली देने से, लेकिन उसकी आदत है कि गाली देगा वो भी फिर अपने को अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको ठेस पहुंची, हिंसा हो गई। और यहां अपने वचन जो निकले वो अप्रशस्त निकले ना, अप्रशस्त वचन भी असत्य की श्रेणी में है, गलत वचन थे। और फिर तीसरा पाप क्या है, गालियों में प्रायः कुशील का समावेश हो जाता है, अब्रह्म, वो भी पाप हो गया। कुल मिलाकर इतने दुराचार हो जाते हैं एक काम में, और फिर वो हर्षित होता है कि अच्छा फटता रहा आज तो, जितना सुनाना था सुना दी। मैंने शाम तक के उसको प्रसन्नता रहती है कि आज तो बस, कई दिनों से मुझे इंतजार था इस बात का, आज मौका मिला, हो गया सब, अच्छी तरह हिसाब चुका दिया। बोलते हैं क्या हिसाब चुका दिया, अभी तो कर्ज ले लिया तुमने। मैंने हिसाब इतना कच्चा है, बनिया होते हुए भी लोग ढंग से हिसाब करने नहीं जानते। वो रुपये पैसे वाला हिसाब तो बहुत सावधानी से कर लेंगे, लेकिन ये जो हिसाब किताब है आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान का, इसमें इतने कच्चे हैं कि कदम कदम पर लड़खड़ा पड़ते हैं। तो मृषानंद नाम का दूसरा रौद्र ध्यान है, तीसरा है चौर्यानंद। पर वस्तु को हड़पने में आनंद मानना, माने कैसा लोभ है संसारी प्राणियों के अंदर। कोई भी चमकीली चीज पड़ी हो रास्ते पर मन न जाने क्यों विचलित होता है। भले जीव में 100 के नोट हो, लेकिन वहां कुछ भी चवन्नी के आकार का दिखा तो लगता है कि चिल्लर काम में आएगी। कैसा प्रबल कषायग्रस्त जीव है संसारी प्राणी। और उसकी तो छोड़ो, आप मौका मिलने पर अनाचार से भी पर संपत्ति को अपनी बनाने में पीछे नहीं हटता। वो तो छापा डालने पर पता चलता है कि कितने दिग्गज लोग उसमें सीबीआई की पकड़ में आ चुके हैं। कितने सारे कांड, ये सब क्या है, कौन सा ध्यान है। चौर्यानंद रौद्र ध्यान है। सात्विकता हो तो पर संपत्ति हड़पने की भावना कैसे हो सकती है, लेकिन अंदर तामसिकता भरी है इसलिए लगता है कि और करते करते जीवन का छोर आ जाता है, लेकिन और का अंत नहीं आता। जीवन का तो एंड दी एंड हो जाता है, लेकिन एंड 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 उसका एंड नहीं होता। चौर्यानंद जमीन किराया टैक्स पर न जाने क्या क्या, वो बचपन से सब आदतें बिगड़ती हैं और बड़े होने के बाद सब परिपक्व हो जाते हैं, लोग माने उस्ताद बन जाते हैं इन सब कामों में। बचपन में रबर पेंसिल से शुरुआत होती है और बड़े होने के बाद में फिर तो कहने ही क्या है, फिर तो बड़े बड़े वकील और मैजिस्ट्रेट भी अपने वश में होते हैं। मेरा कितना भयंकर परिणाम है इसका, इस पर दृष्टि नहीं है, बस अभी जो फायदा हो रहा है बस वही दिख रहा है उसको। उसको ये नहीं समझ में आता कि इसका परिणाम क्या है। कानून व्यवस्था भले उसको न पकड़ पाए, लेकिन क्या इतने मात्र से वह अपने भविष्य में सुरक्षित रह सकेगा? पाप कमाएगा, पुण्य नष्ट करेगा, और एक सीमा होती है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, अवगुण तुझको माफ है चाहे करे हजार। जब तक पुण्य का एग्रीमेंट चल रहा है अभी, तब तक तो माफ है, हजारों पाप कर लो, लेकिन जहां ये पुण्य का करार समाप्त हुआ, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तब बड़े बड़े लोग रास्ते पर आ जाते हैं, फुटपाथ पर, जिनकी संपत्ति से बहुत लोगों का पेट पलता था, वे अब एक एक कौर के लिए तड़पते हैं। सुनते समय तो आपको ये सब बातें लग रही है कि हां ऐसा होता होगा और होता है, लेकिन अगर सामने प्रयोग में आ जाता है तो फिर पैर डगमगा जाते हैं। ये तो परीक्षा है जीवन की। जीवन में बस दो परीक्षा की घड़ी आती है, एक का नाम है संपत्ति और दूसरी का नाम है विपत्ति। संपत्ति में मनुष्य विचलित हो जाता है और विपत्ति में विचलित हो जाता है। जैसे बहुत दिनों से धार्मिक अनुष्ठान करता रहा कोई और अकस्मात विपत्ति आ गई तो विचलित हो सकता है वो, अगर उसकी श्रद्धा कच्ची है तो उसको लगेगा कि क्या फायदा धर्म करने से, इतना धर्म किया और फिर क्या सार निकला, ये विपत्ति आ गई छोड़ो छाड़ो, ऐसा हो जाता है। पर संपत्ति में जो पहले बड़ी नम्रता के साथ पेश आते थे, उनके भीतर भी एक अकड़ पैदा हो जाती है। संपत्ति ऐसी खतरनाक चीज है, क्योंकि ऐश्वर्य का मद बड़े बड़ों को विचलित कर देता है। जो पहले भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम करते थे, वो अब संपत्तिशाली होने के बाद सोचते हैं कि क्रीज में बिगड़ गया है, कपड़े की क्रीज खराब ना हो जाए नमस्कार करते समय, तो वो खड़े खड़े गुड मॉर्निंग या और कुछ करके चले आते हैं भगवान को। ये है उस अहंकार का दुष्परिणाम। और फिर इसका परिणाम क्या है, वो तो बहुत लंबी छोड़ेगी कहानी है। मानो कितना पतन हो सकता है मनुष्य का इन दुर्ध्यानों के निमित्त से। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और चौथा रौद्र ध्यान है परिग्रहानंदी।
परिग्रह में आनंद मानना,
भले साल भर एक भी बार उस वस्त्र को आपने नहीं पहना जो अलमारी में लटक रहा है, लेकिन अंदर एक आनंद है कि मैं इसका स्वामी हूं। कितने कपड़े हैं तुम्हारे पास? तो जो कपड़े बहुत दिनों से नहीं पहना वो भी मेरे पास है। इस बात का अंदर ही अंदर एक आनंद है, इसका नाम है परिग्रहानंद। कितना खतरनाक है ये आनंद। देश के कई बच्चे तो भूखे तड़प रहे हैं, ठंड में पहनने को कपड़े नहीं हैं, रात भर ठिठुरते रहते हैं। मेडिकल हॉस्पिटल के पास देखेंगे आप ठंड के मौसम में कभी, तो अगर आपके अंदर दिल होगा तो फिर आंखों में पानी होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर अंदर पत्थर होगा तो आप ये कहकर के निकल जाएंगे कि कर्म का फल भोग रहे हैं, लेकिन ठंड में ठिठुरते हुए भारत के बहुत से बच्चे, बहुत से माता पिता गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीने के कारण रात्रियां व्यतीत कर देते हैं। उनको कभी सोने नहीं मिलता, हीटर क्या चीज है उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना, कंबल का उन्होंने अपने जीवन में कभी स्पर्श तक नहीं किया। और यहां आपके यहां इतने अनावश्यक वस्त्र पड़े हुए हैं, दूसरों का शोषण हो रहा है, मानवता का विनाश है। मानवता कभी इसकी अनुमति नहीं देती कि एक का शोषण हो और अपना पोषण हो। तड़पते हैं लोग, वो मां जो है बच्चे को ढांकने के लिए अपने वस्त्र उसके ऊपर डाल देती है, स्वयं ठिठुरती है तो भी बच्चा बेचारा पूरा ढक नहीं पाता। क्या कभी ऐसे दृश्य आपने देखे हैं कि अपनी धुन में मस्त होकर के आप चले जा रहे हैं, इतने साल आप अपनी धुन में निकाल चुके हैं, ये मत सोचना कि आप बहुत दूर हैं उन चीजों से। कर्मों का तो इतना प्रबल न्याय होता है कि वो तो बिल्कुल एक क्षण में आपको उससे भी नीचे पहुंचा दे, उसमें कोई जाति भेद नहीं चलता, उसमें पैसों की रिश्वत भी काम में नहीं आती। जैसा पाप जीव करता है वो पाप उसको वहीं ले जाकर के पटक देता है। भोपाल की एक झोपड़पट्टी में, झुग्गी झोपड़ी है भोपाल में बहुत, वहां एक बच्ची ने जन्म लिया और वो लोग सुअर पालने वाले लोग थे और कभी कभी उनको सुअर को मार करके खा भी जाते थे। वो लड़की बोलती थी कि हम नहीं खाएंगे, तो उसके माँ बाप पूछते थे क्यों नहीं खाएगी, तो बोलती थी हम ब्राह्मण हैं, हम कैसे खाएंगे, सुअर नहीं खाते हम। अब बताइए वो छोटी सी बच्ची हम ब्राह्मण है कह रही, क्या मतलब इसका? ऐसी बोल रही है क्या, कुछ नशे में बोल रही है क्या? बड़े लोग तो नशे में बोल सकते हैं, लेकिन बच्चे जो दिल में होता है वो बोल जाते हैं। उसके अंदर पूर्व जन्म के ऐसे कोई संस्कार विद्यमान है जो उसको याद दिला रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, ये चीज मुझे नहीं खाना, छूना भी नहीं। अब बताइए आप उसने कौन सा पाप किया कि उस ब्राह्मण कुल में से है, यहां आ गई, सुअर खाने वालों के बीच आ गई। कर्म है, अब वो मन से करो, वचन से करो और क्रिया से करो। पाप से तो बचना ही श्रेयस्कर है। ऐसे और भी बहुत उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन फुर्सत कहां है देखने की। अपने वो इंद्रियों का सुख मिलना चाहिए बस, सुबह शाम और दोपहर में, और अपने अपने समय पर जो कुछ है वो सब मिलना चाहिए, तब हम मानेंगे कि धर्म सही है। यानी धर्म की परीक्षा जो है उसका मापदंड क्या हो गया, इंद्रियों के सुख। यही तो मनुष्य चूक गया। वास्तव में इंद्रिय सुखों से भी बड़ा सुख दिलाने वाली चीज को इसने इंद्रिय सुखों के लिए बाजी पर लगा दिया। आचार्य कहते हैं जयसेन स्वामी कि ऐसे दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके जो विषय भोगों में अपना समय नष्ट करते हैं, त्याग योग को जो अंगीकार नहीं करते, वो क्या करते हैं? तो वो लकड़ियां लादने के लिए हाथी का प्रयोग करते हैं और पैर धोने के लिए अमृत का प्रयोग करते हैं और बर्तन मांझने के लिए उनको राख चाहिए थी, वो चंदन की लकड़ी पड़ी थी, जला दी, राख तो मिल गई। ऐसी अज्ञानता पूर्ण चेष्टा करते हैं। देखो कितनी खुशी हुई आपको इन बातों को सुनकर। मैंने खुशी है ना, एक हंसी सी आई आपको कि कैसी मूर्खता है, लकड़ियों का गट्ठर वजन लादने के लिए हाथी पाला है और पैर धोने के लिए अमृत उड़ेल रहा है, बर्तन मांगने के लिए राख चाहिए सो चंदन की लकड़ी जला रहा है। लेकिन अपने जीवन की तरफ दृष्टि डालकर विचार करना कि क्या हम उस व्यक्ति से कम है जो ऐसी विपरीत चेष्टाएं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? दूसरों पर हंसना तो बहुत आसान है, लेकिन अपनी दशा देखो। परिग्रहानंद ये चौथा रौद्र ध्यान है, इसके कारण बहुत सारे जीव दुर्गति में चले गए। संपत्ति बढ़ती जा रही है लेकिन फिर भी अंदर शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे जैसे संपत्ति बढ़ रही है अंदर अशांति भी बढ़ रही है। मनुष्य समझ नहीं पाता कि क्या बात है आखिर। मैं तो पहले ही सोचता था कि जितनी संपदा बढ़ेगी उतना आनंद आएगा, लेकिन संपदा तो बढ़ रही है, आनंद घटता चला जा रहा है, क्या बात है। वो गरीब तो फुटपाथ पर अखबार बिछाकर रात में गहरी नींद सोता है और ये गद्दों के ऊपर भी जैसे गधा लौटता है ना रेत में, वैसे इन सौम्निया जानते हैं ना आप, निश्चित रूप से जानते होंगे। इन सौम्निया का अर्थ होता है अनिद्रा रोग। नींद की गोली खाते हैं रात में 11 बजे, नींद आ जाए, कहां चली गई नींद? और उसको क्यों आ रही है नींद? मजदूर को, वो दिन भर मेहनत करता है, आप नहीं करते क्या? आप तो दिन रात मेहनत करते हैं, वो तो सिर्फ दिन में करता है। ये परिग्रहानंद नाम का रौद्र ध्यान, जिसमें जितना अधिक परिग्रह उतनी अधिक अशांति, क्योंकि जैसे जैसे इष्ट विषयों की पूर्ति होती है वैसे वैसे तृष्णा घटने के बजाय बढ़ जाती। इष्ट विषय की बात कर रहा हूं मैं, वैसे दाल भात खूब मिल गया आपको तो फिर तृष्णा नहीं बढ़ने वाली। यदि कोई खास विषय मिलेगा तो आपको लगेगा कि और मिल जाए या फिर इससे और अच्छा मिल जाए कुछ। सादे सूती कपड़े मिल जाएंगे तो फिर कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर कोई और जापानीज या फिर अमेरिकन कोई वस्त्र आ जाए आपके पास तो लगेगा कि अब जापान और अमेरिका का तो आ चुका है, रूस का और मिल गया, या ऑस्ट्रेलिया का आना चाहिए एकाध, या न्यूजीलैंड का आना चाहिए कोई वस्त्र। ये तृष्णा, इसलिए संतोष वृत्ति ही आज के युग में मनुष्य को शांति प्रदान कर सकती है। वरना आप अपने हृदय में झांक कर देखना कितना असंतोष है। सबसे बड़ी बीमारी है आज के युग में, कोई भी व्यक्ति जो जहां पर है वहां संतुष्ट है क्या? दुकान वाला दुकान में संतुष्ट नहीं है, घर का कारोबार संभालने वाले जो होम मिनिस्टर्स हैं वो वहां संतुष्ट नहीं है, पढ़ाई करने वाले वहां संतुष्ट नहीं है, और फिर जिनको फुर्सत है कोई काम नहीं है
वो वहां संतुष्ट नहीं है। छुट्टी नहीं मिलती तो बच्चा असंतुष्ट रहता है, छुट्टी मिलती है तो भी संतोष कहां हो पाता, फिर वो चिंता लगती है कल तो स्कूल जाना पड़ेगा। माने कोई संतुष्ट नहीं है, संतोष वही है जहां लोभ की निवृत्ति है, जो मिले सो ठीक, ऐसा भाव जहां है वहां संतोष है। जितना है मेरे पुण्य से ज्यादा मुझे क्या मिलेगा, और मैंने वो पुरुषार्थ किया है इस जीवन में जितना योग्य है। देखो आवश्यकताओं के लिए तो पुरुषार्थ करोगे आप, परेशानी नहीं जाएगी ज्यादा, लेकिन इच्छाओं के लिए आप पुरुषार्थ करते रहोगे तो फिर इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। वैराग्य भावना में पंक्तियां आती है ना, तृष्णा नागिन क्यों क्यों बनके लहर जहर की आवे। जैसे जैसे अपने इष्ट मनोरथ पूर्ण होते चले जाते हैं वैसे वैसे तृष्णा रूपी नागिन बसती चली जाती है और जहर की लहर आती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मरते दम तक व्यक्ति नमो अरिहंतानम या राम या और कोई प्रभु के नाम नहीं ले पाता, उसको बस एक बीमारी लगी रहती है तृष्णा की। पूछता है कि बेटा कहाँ है मेरा, छोटा लड़का कहाँ है, वो कहता है कि पैर दबा रहा हूं, मझला कहाँ है दवाई घोल रहा हूं, और सझला कहाँ है, वो सब पूरे हिसाब रहते हैं उसके दिमाग में मरते तक। तो बोले कि मैं आपके सिर के पास हूं और सबसे बड़ा, तो वो वहां दूसरे कमरे से कहता है कि आ रहा हूं पिताजी। अरे चारों वहीं तो दुकान पर कौन है, ये है परिग्रहानंद रौद्र ध्यान। इसका परिणाम क्या है, दुर्गति, मरकर अपने खजाने में सांप बन जाए, न खुद भोगे न दूसरों को भोगने दे, इतना भयानक इसका परिणाम है। तो ये तो दुर्ध्यान हुए, इनसे हटना ही तो धर्म पुरुषार्थ है। इनसे हटकर जो दूसरे रास्ते पर आ गए उन्होंने जीवन में शांति के दर्शन प्राप्त किए। ऐसा मत सोचना कि भविष्य में शांति मिल जाए, अरे मिलना हो तो अब भी मिले, पर त्याग का प्रत्यक्ष फल है। कभी आपने दान किया हो, गुप्त दान किया हो, कभी आपने मुक्तागिरी के गोलक में आपने डाले हो कुछ बड़ी रकम डाली होगी, कभी आपने किसी को पता नहीं चला, सिर्फ आप जानते हो, डालते समय आपको सुख हुआ कि नहीं, कितना सुख हुआ, आपने किसी से बताया भी नहीं। शायद ऐसे एग्जाम्पल्स कम होंगे, लेकिन यदि कोई ऐसा करके देखे, प्रैक्टिकली अजमा के देखे, तो तत्काल सुख होता है, क्योंकि इतना बड़ा जो लोभ था उस जरा से कागज के टुकड़े पर, वो लोभ जब दूर होगा तो सुख नहीं होगा, तत्काल सुख होता है। दान दिए मन हर्ष विशेखे, मन हर्षित होता है दान देने से। लेकिन आज दान के साथ भी जो दूसरी परंपरा जुड़ गई है, बोली, ये क्या है, कहीं आगम में आया है बोली, कहीं शब्द ही नहीं मिलता बोली नाम का, लेकिन उस बोली की स्पर्धा में फिर लोग अपनी राशियां बढ़ाते हैं। और आचार्यों ने स्पर्धा को भी शुभ ध्यान नहीं कहा, मोक्ष मार्ग में भी स्पर्धा का निषेध किया कि वो इतना उपवास कर रहा है तो मैं उससे ज्यादा करूं, ऐसा नहीं। तुम अपनी शक्ति देख करके करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा करने के लिए करते हो तो इस अभिप्राय को बदल लो, करो मना नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा करो ये सोच करके मत करो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं आर्त और रौद्र ध्यान को लेकर, कैसे कैसे आर्त ध्यान, कैसे कैसे रौद्र ध्यान होते हैं, बड़ी जटिल प्रक्रिया जीवन में वो चली रहा है निरंतर। तो अब फिर धर्म ध्यान की शरण ही जीव के लिए हितकारक होती है। ये धर्मिक ध्यान क्या चीज है, शुक्ल ध्यान क्या है, तो उसी को यहां मोक्ष मार्ग के प्रकरण में ध्यान संज्ञा दे करके उसकी प्रेरणा की जाती है कि आर्त रौद्र ध्यान छोड़कर धर्म ध्यान में परिणत हो। धर्म ध्यान में बहुत सारे आलंबन है और शुक्ल ध्यान में भी आलंबन है। फिर अंततः वह केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। धर्म ध्यान में जाप है, अनुप्रेक्षा है, बहुत भावनाएं हैं, 16 कारण भावनाएं, ये भी धर्म ध्यान है। जाप करना, कैसे करना, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा के विषय में बताया था, अनु याने बारंबार, प्र याने अच्छी तरह, इच्छा याने चिंतन करना, वो 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना, नहीं तो तिजोरी का चिंतन करने लग जाओ, बार बार करने लग जाओ, अच्छी तरह करने लग जाओ, वो धर्म ध्यान नहीं कहलाएगा। हाँ, यदि मुनि चिंतन करे किसी की तिजोरी का, तो चूंकि उनका वो परिग्रह नहीं है इसलिए वो उसका चिंतन करते हुए भी निरी वित्ती हवे जरा साहू लद्धूण यत्तम तवाहुतम तस् निश्चयम झाणम। द्रव्य संग्रह में कहते हैं जम किंची विचिंतन तो निरीह वित्ती हवे जदा साहू लद्धूण यत्तम तदाहुतम तस् निश्चयम झाणम। साधु किसी भी चीज का विचार करे, किसी भी चीज पर अपना मन लगाए, लेकिन कोई कामना नहीं है उस पदार्थ की, तो उनकी जो परिणति है वो बिल्कुल ध्यान रूप है, उनके ध्यान में बाधा नहीं आएगी। लेकिन अगर गृहस्थ करने लग जाए पड़ोसी की तिजोरी का चिंतन, तो फिर उसको जरूर आर्त रौद्र ध्यान होगा कि उसके पास इतनी संपत्ति कहां से कमाई होगी, कहीं से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया होगा, ऐसे कई विकल्प आएंगे मन में, तो वो आर्त रौद्र ध्यान में चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि आर्त रौद्र ध्यान से जहां तक बने वहां तक बचो, और बचने के लिए क्या करें, धर्म ध्यान करो, माने अपनी भूमिका जो करने की है वो करो। धर्म ध्यान के लिए क्या करें, तो पंच परमेष्ठी का आलंबन, अनुप्रेक्षा का चिंतन आदि आदि बहुत सारे उपाय हैं, सामायिक है, उपवास है, दान है, इन सब माध्यमों को आधार बना करके ये जीव आर्त रौद्र ध्यान से दूर हट सकता है। ठीक है, सराग अवस्था में राग भी साथ चलेगा कुछ एक अपनी सीमा तक, लेकिन वो राग है ऐसा सोच करके आप सोचो कि भाई अब ये सब क्या करना, राग तो है ही साथ में, तो ऐसा सोचना भी उचित नहीं है। राग को सर्वथा यहां पर त्याज्य नहीं कहा जा सकता। जो विषयों के अनुराग में फंसा हुआ है, भोगों के प्रति जिसका राग लगा हुआ है, वो यदि भगवान से अनुराग करता है तो अच्छा है या खराब है, अच्छा है ना, तो इसलिए उसका अभी निषेध नहीं है। फिर आगे चल करके जब ध्यान की भूमिका जो जैसे जैसे ऊपर उठेगी तब उसकी बात अलग है। ऊपर की सीढ़ी पर पैर रखोगे तो नीचे की सीढ़ी अपने आप छूट जाएगी, लेकिन ऊपर की सीढ़ी पर पैर रखे बिना आप कहो कि भाई हम इस सीढ़ी पर क्यों पैर रखें, तो कहां जाओगे सोच लो, माने ऊपर तो पैर नहीं रखे और फिर यहां भी रखना नहीं चाहते तो कहां जाओगे, बिल्कुल सीधे एक ही रास्ता है। तो वो रास्ता आपको पसंद है क्या, कि जिससे अपना जीवन, अनमोल जीवन व्यर्थ चला जाए। उस रास्ते से बचना ही बुद्धिमानी है, इसलिए धर्म ध्यान का आलंबन लेना, फिर धारणा के बाद ध्यान और ध्यान के बाद अंत में समाधि है। ध्यान के बारे में और भी कुछ बातें हैं जो जानने योग्य है और अभ्यास करने योग्य है। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचितन। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोय सर्वसाहूणम। परम पूज्य पंच परमेष्ठी भगवंतों की।